नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे दुवमचलमनोवमं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुण मिनमो सुदकेवलि भणिनम्।
ये कुंदकुंदाचार्य भगवान का समय सार है और इस समय सार के निर्जरा अधिकार के हम 200 नंबर की गाथा देख रहे हैं और इस गाथा पर जो प्रवचन चल रहे हैं स्वामी जी के वह 83 पृष्ठ पर हम आए हैं। अब यह आखिरी पैराग्राफ जो है वहां अपनी बात चल रही थी जुवो जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए ते भावपन कर्मना उदयनो विपाक छे एम ज्ञानी जाने छे अने एम जानतो ते समस्त परभावों ने छोड़े छे। यहाँ परभाव का अर्थ क्या लिया था नलिन भाई? राग द्वेष के परिणाम। बहुत अच्छा। हाँ तेथी ते बोलो बोलो।
देखो अभी अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बात आई थी ना चारित्र मोह के उदय में ये जो कषाय भाव होते हैं, अब ये तीर्थंकर गोत्र बांधने के जो परिणाम है
राग परिणाम
है। परिणाम है ना शुभ भाव है तो शुभ भाव है वो कषाय है कि अकषाय है पहले ये नक्की करेंगे। कषाय है तो क्यों हुआ है तो चारित्र मोह के उदय में हुआ है इसलिए यहाँ कहा कि कर्मना उदयनो विपाक चे।
विपाक इतले फल
है ना यानी जो शुभ भाव होते है वो भी चारित्र मोह के वहां मंद उदय चल रहा है तीव्र उदय होता है क्रोधादि का उदय होता है तो वहां पर क्रोध मान मायलोवादी होते हैं तो यहाँ जो शुभ राग तो पुण्य प्रकृति के उदय में पुराने कर्म के उदय के कारण यहाँ तीर्थंकर प्रकृति बांधने योग्य जो परिणाम है शुभ भाव है ये बात सब जीव जान जाए ऐसी जो वहां राग भाव चलता है तो ये पुराने कर्मों के उदय का फल है ऐसा कहते हैं। अभी यही बात हुई थी ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में।
पढ़े तेथी ते सम्यक दृष्टि नियम थी ज्ञान वैराग्य संपन्न होई छे। पहला ज्ञान वैराग्य नी बे गाथाओ 195-96 नी आवी गई एनो आ सरवाळो लीधो छे। शुद्ध चैतन्य बिंब पूर्णानंद स्वरूप प्रभु आत्मा ने जाणवो अनुभववो ते ज्ञान अने राग नो त्याग करवो ते वैराग्य छे। ज्ञान वैराग्य की बात ली ना और यहाँ निर्जरा अधिकार चल रहा है और निर्जरा में हमने देखी थी तीन बातें होती है एक अशुद्ध का त्याग कहो या अशुद्ध का उत्पन्न न होना शुद्ध की कंटिन्यूएशन जो शुद्ध परिणति हो रही है शुद्ध भाव चल रहा है और वहाँ कर्मों का भी खिर जाना ये तीनों बातें हो रही थी। वही कह रहे कि जो अपने आत्मा का जानना अनुभवना वह ज्ञान है और वह जो राग उत्पन्न हो रहा था वो नहीं हो रहा है वो वैराग्य है। त्रिकाल अस्थिनु ज्ञान ये त्रिकाल अस्थि किसकी है? त्रिकाण अस्थि किसकी बताइए? अपनी स्व की आत्मा की। ज्ञान भी है वो तो उसका लक्षण है, जो लक्ष्य है वह आत्मा। त्रिकाणस्यनु ज्ञान अने राग प्रति वैराग्य उदासीनता, ये वैराग्य किसके प्रति है? सारे विश्व के हमारे रिलेटिव्स हैं, ये है समाज, वो नहीं। तो कह रहे कि राग, जो मेरा राग था उसके प्रति उदासीनता है और उसी को यहाँ त्याग कहा है। राग प्रति वैराग्य उदासीनता के त्याग कुछ भी होवे, आ रीते ज्ञान ने वैराग्य बे शक्ति धर्मी ने होई छे। यहाँ तो मुनि की अपेक्षा ही बात हुई हो, तो इसका अर्थ ऐसा नहीं समझना कि चौथे गुणस्थान वर्ती के भी ऐसे भाव होंगे, लेकिन बहुत जिसको हम कहेंगे नॉमिनल। धर्मी ने बे शक्ति होई छे एम सिद्ध थयु, पर शू कहू के पोतानो जे ध्रुव न्यायक स्वभावी वितराग स्वभावी आत्मा तेने धर्मी ग्रहे छे एटले जाने छे, अने पोताना वस्तुत्व ने एटले पोताना स्वभाव ने ज्ञानानंद स्वभाव ने विस्तारे छे अने राग नो अभाव करे छे। स्वभाव ने विस्तारे छे एटले पर्याय मां प्रकट करे छे। आ रीते ज्ञानी ज्ञान वैराग्य शक्ति थी संपन्न होय छे। दसमी गाथा मां राग नो सोमी गाथा मां राग नो करता नथी निमित्त नथी एम आव्यु हतुं, अने आ बसोमी गाथा मां ज्ञानी ज्ञान वैराग्य शक्ति संपन्न होय छे एम आव्यु। हवे बसो गाथा उपरनो भावार्थ, जारे पोताने तो न्यायक भाव स्वरूप सुखमय जाणे अने कर्मना उदयती थयेला भावोने आकुलता रूप दुःखमय जाने, त्यारे ज्ञान रूप रहेवुं अने परभावोथी विरागता ए बन्ने अवश्य होय ज छे। ये सच्चे मुनि का स्वरूप बताया उन्होंने, वो जोयुं बे गुण लीधा छे, भगवान आत्मा न्यायक स्वभाव रूप अने अतीन्द्रिय आनंदमय सुखमय छे। ज्ञानी पोताने आवो जाने छे अनुभवे छे अने कर्मना उदयती थयेला भावोने एटले राग द्वेष परिणामोने आकुलता रूप दुःखमय जाने छे। पंडित श्री जयचंदजीए आ टूकू करीने कह्युं, आ पंचमहाव्रत आदि जे विकल्पो थाय तेने ज्ञानी दुःखमय धगधगती भट्टी जेवा आतापकारी जाने छे। ताप आपवा वाला आताप, गजब वात छे। देखो अभी भी ये अपनी यही बात हुई थी ना, वो मुनि बना नहीं है, वह तो शुभ भाव जो उनके वो उठ रहे हैं उनमें से भी मैं हटके अपने स्वरूप में कब जाऊं, ऐसी उनकी बहुत इच्छा होती है और वो प्रयत्नशील होते हैं और उसमें यश भी प्राप्त करते हैं, यानी सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि वो भी जानते होंगे कि नहीं कि अंतर मुहूर्त से अधिक काल में अगर शुभ में रहूं या अशुभ में रहूं तो हाँ वो भी जानते हैं, क्यों नहीं जानेंगे। तो इसलिए तो कहते हैं ना जे पंचमावृत आदि जे विकल्पो थाय, आदि में 28 मूलगुण सब ले 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 हा? तेने ज्ञानी दुखमय, तो वो दुख कैसा है? धगधगती भट्टी जेवा आतापकारी, गजब वात छे प्रभु। छड़ाड़ा में कहू ने मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। आ जीवे मुनिव्रत अनंतवार धारिया ने पाड़िया, पन ए तो राग आश्रव हतो दुखमय भाव हतो, एमा सुख क्या हतो ते प्राप्त थाय। कहू ने के सुख लेस न पायो अर्थात दुख ज पायो भाई, कर्मना उदयजनित भावो दुखमय होय छे अने ज्ञानी तेने दुखमय जाने छे। तेथी कहे छे ज्ञानी ने ज्ञान रूप रहेवू ने परभावो थी विरागता ए बन्ने साथे अवश्य होय छे। क्या कहना चाहते है? देखो यहां परभाव यानी अपने में उठने वाले जो राग द्वेष के परिणाम, उसको परभाव कहा, क्योंकि इसको परभाव क्यों कहा कि वे स्वभाव रूप नहीं है। त्रिकाली स्वभाव में राग द्वेष के परिणाम नहीं होते हैं और पर के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, कर्मों के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, तब कहेंगे कि वो परभाव है। पुद्गल में कहा था ना, तो क्या कहा, ज्ञानी ने ज्ञान रूप रेमु, ज्ञान रूप रेमु એટલે स्वने जाणवू, स्वनो अनुभव करवो, अने परभावो थी विराकता, ए बन्ने साथे अवश्य ज होय छे। बापू आ तो धीराना काम, अजब गजब ना भाई। निज तत्व आत्म तत्व सदा ज्ञान में अने सुखमय स्वभाव रूप छे, तेने जाणतो अनुभवतो ज्ञानी रागना अभाव वडे वीतराकता ने विस्तारे छे। लियो आ धर्म ने आवो धर्मी, परंतु राग ने एटले व्यवहार ने करे अने राग ने विस्तारे ते धर्मी नथी। इतनी सी छोटी सी एक डेफिनेशन दे देते हैं, क्या लिखा समझ में आया। जे राग ने करे अने राग ने विस्तारे, विस्तारे अने अपने ही पर्याय में राग की उत्पत्ति करे, उसको कहते हैं कि वो धर्मी नहीं। गजब वाच है। ऊपर दिया ना कि ज्ञान को ज्ञान रूप रहे, राग नहीं करे, और जो राग है उससे निवृत्त हो जाए उसको विरागता है, और ये दोनों साथ में होते हैं। यही बात यहाँ कहते हैं, राग ने करे अने राग ने विस्तारे ते धर्मी नहीं। गजब वाच छे भाई। लोगों ने तो बाहर में पुण्य भाव रूप क्रियाकांड में धर्म मनावो छे, पन बापू आम ने आम जिंदगी एड़े जशे, एड़े एटले इनवेन ना फोकट, कांई दया दान ना पुण्य ना भाव करिया हशे तो 5-50 लाख करोड़ नी धूड़ संपत्ति मळशे। पन बापू ए तो धूल नी धूल धूल मां छे, क्या कर। ये स्वयं पुद्गल है ना, तो मिट्टी समान है, तो ये धूल के धूलनी धूल, ये क्या छे, धूल में छे, એટલે પુદ્ગલ માં છે, એમાં ક્યાં આત્મા છે। देखो देखो अभी यहां ये जो बात निकली ना, तो मैं अभी आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। यहां कह रहे हैं कि कांईक दया दान ना पुण्य ना भाव कर्या हशे तो 5-50 लाख वगैरह वगैरह संपत्ति मळशे। अभी आपने जो बात चल रही थी ना फोन वाली, तो भाई कहते हैं कि आपने तो पुस्तक में ऐसा लिखा कि पुण्य परिणाम ही यह है, लेकिन हम पुण्य नहीं करेंगे तो हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र का लाभ भी कैसा मिलेगा, उनका समागम भी कैसा होगा। आप ही लिखते हो कि देवगुरु शास्त्र का समागम प्राप्त होना ये पुण्य का उदय है, और एक जगह आप कहते हो पुण्य ही है, तो ये कैसा। देखो उसको दोनों बातें ऐसी लगती ना, तो ये पूछे ऐसा। तो फिर उसको मैंने कहा कि एक कथन है वह निश्चय का है, दूसरा है वह व्यवहार का है। तो फिर उसको बहुत लंबा समझाया, तब वो समझ गया। तो यही बात है ना, पुण्य भाव करिया हशे तो 5-50 लाख, ये धरोड़ ये जो धूल मिली है ना, तो उससे तो आत्मा का कोई कुछ नहीं होने वाला है, वो तो जो है वह धूल मत जे एम कीधु ने, एमा क्या आत्मा छे, वह आत्मा में ये क्या छे, आ रूपाड़ो देह छे तेनी पन राख थशे अने धूल एटले संपत्ति धूल मां रहेशे। आय कहे छे ज्ञानी कर्मना उदय थी उत्पन्न थयेला भावो ने दुख में झेर जेवा हेय जाने छे, एने अने तेने निज सुखमय स्वभावना आश्रय छोड़ी दे छे। आहा, ज्ञान में रहेवू एटले ज्ञान स्वभावी नित्यानंद स्वरूप भगवान आत्मा में रहेवू टकवू, ये अभी बात आई थी ना, कि ज्ञानी ने ज्ञान रूप रहेवू, तो उसकी बात यहां समझा रहे। ज्ञान में रहेवू एटले ज्ञान स्वभावी नित्य आनंद स्वरूप भगवान आत्मा एमा रहेवू टकवू, अने वीतरागता एटले राग, विरागता एटले राग थी खसवू, एम बन्ने ज्ञानी ने एक साथे होय छे। आ वात प्रकट अनुभव गोचर छे, ए ज्ञान वैराग्य ज सम्यक दृष्टि नु चिन्ह छे। व्यवहारना राग ने करवू ए सम्यक दृष्टि नु चिन्ह वा लक्षण नथी, पण अंतर दृष्टि वडे स्वरूप में सावधान रहेवू अने राग थी खसवू ए सम्यक दृष्टि नु लक्षण छे, आवो मार्ग छे भाई। त्यारे कोई कहे कि जरा सेलू करो, वंदना जात्रा इत्यादि पण करवू एम कहो, जो पूजोमां पण आवे छे ने, शुं आवे छे, एक बार बंदे जो कोई ताको नरक पशुगति नहीं होई। क्या कह रहे, यहां तो ऐसा समझा रहे हैं कि सम्यक शिखर जी को एक बार अगर कोई यात्रा करे, वंदना करे, तो कहते एक बार बंदे जो कोई ताको नरक पशु गति नहीं होई, उस जीव को नरक या पशु यानी तीरंच गति नहीं होगी। लेकिन जिसके तत्व की थोड़ी बहुत पहचान है, मालूमात है, तो एक भव में अगले कितने भवों का यह आयु बांधता है। मम्मी, कोई जीव अभी चालू भव में अगले कितने भवों का आयु बांधेगा, एक कच्छ। तो ये क्या समझ रहा है, देखो, एक बार बंदे जो कोई, ये ऐसा मानता है कि मैंने अगर एक बार जाके वंदना कर ली तो मुझे आगे जिंदगी कभी भी इन फ्यूचर तीरंच गति और नरक गति नहीं होगी, ऐसा थोड़ी है। तो पहचान होगी तो भाई ये तो शुभ भाव है, और वो शुभ भाव है और उस समय बाय चांस तुझे आयु का बंद होगा, बाय चांस हो तब तुझे वो उसका बंद नहीं होगा, देव का होगा और क्या। वहां से वहां जो कुछ उसको जो कोई अनुकूलता मिलती है, जो संयोग मिलते हैं, उसमें इतना रचा पचा रहेगा, यहाँ आके एक इंद्रिय में जन्मेगा, ख्याल में है? तो वो बताने वाले तो बताते हैं कि भाई ऐसा तो लिखा है कि आप वंदना करो, यात्रा करो, क्योंकि पूजा में भी ये बात लिखी है और आप मना करते हो, तो समझा रहे हैं, अरे भाई अज्ञानी एकाद भव नरक पशुमां न जाए तो तेथी एने शुं लाभ छे, अज्ञान ने मिथ्यात्व रहे तो पछी पन ते तीरंचादी मा जशेश सम्यक शिखर नी वंदना नो भाव पन शुभरागत छे, जेने ज्ञानी दुख में जाने छे। सम्यक शिखर नी लाख वंदना करे तो ते शुभरागत छे, धर्म नथी अने तेने उपाधि ग्रहण करवा योग्य माने त्या सुधी ते जीव मिथ्या दृष्टि छे। और आगे क्या लिखा? हाँ मम्मी, देखो 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 क्यों जैन किसको कहना, आपको लगेगा ये मिथ्या दृष्टि कहो तो जब तक तो ठीक है ना, या तुम जैन नहीं ऐसा कहे कि हमको तो और तकलीफ में डालते हो। भाई तकलीफ में नहीं, ये तुझे रियलिटी बता रहे। जैन किसको कहना अपने सौभाग चंद जी? हाँ स्वरूप में, हाँ हाँ हाँ, आपका कहना ऐसा है, वो तो दूसरी भाषा में बोले वो कि जिसने आंशिक मोह राग आंशिक राग द्वेष को और मोह को नष्ट किया है, मोह को पूर्णतः कहो या ये कहने की बात है, मोह का अनुदय किया है यानी ये दर्शन मोहनी की बात है, और चारित्र मोहनी में आंशिक राग द्वेष को जीता है यानी जिसके अनंतानुबंधी नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, ये कब होगा कि जब अपने स्वरूप का अनुभव करेगा, तो उसको ही जैन कहा है। और यहां क्या कहते हैं, त्या सुधी ते मिथ्या दृष्टि छे जैन नहीं, तो जिसको समझेगा वो समझेगा कि ये हमारे लिए यथार्थ वर्णन कर रहे हैं कि भाई तू जैन नहीं मत समझ, स्वयं को जैन का अर्थ तो समझ ले। हवे जे जीव परद्रव्य में आसक्त एटले रागी छे अने सम्यक दृष्टिपनानु अभिमान करे छे ते सम्यक दृष्टि छे ज नहीं, वृथा अभिमान करे छे के हूँ तो अमुक अमुक नथी, हूँ तो व्रती छूं। हाँ शू कीधु, ए सम्यक दृष्टि छे ज नहीं, ऐसा कह रहे एवा अर्थनु कलश रूप काव्य हवे कहे छे। जरा पीछे चलते हम जहां पर, हाँ अच्छा 78 पृष्ठ पर हम दोबारा जाएंगे। मंदाक्रांता है।
सम्यक् दृष्टि स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्यात् इत्युक्तानो पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समिति परतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावगमविरहात् सन्ति सम्यक् त्वविरता।
ये सम्यक् त्व चाहिए
तो बराबर
हाँ। देखो यहाँ पापा किसको कहा है हमारे बच्चे हमको क्या बोलते हैं पापा तो पापा का
पापा है ने पापी
पापा घर तो पापी होते हैं चलो आगे बोलो
देखो श्लोक अयम अहम स्वयं सम्यक दृष्टि मैं जातो बंधन न स्यात् यानी जो ऐसा सम्यक दृष्टि अपने को कहलाता है वो कैसा है उसकी बात चल रही क्या कहते आ हूँ पोते सम्यक दृष्टि छू मने कदी बंद थतो नथी कारण के शास्त्र में सम्यक दृष्टि ने बंद कयो नथी इति एम मानी ने उत्तान उत्पुलक वदनाहा जेमनु मुख गर्वथी ऊंचू तथा पुलकित एटले रोमांचित थयु छे एवा रागी जीवो रागी ना है ना यानी जो स्वयं को सम्यक दृष्टि कहकर मुझे बंद नहीं होता क्योंकि शास्त्र में कहा है सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता है और यहाँ राग में स्वच्छंदता कर रहा है तो ऐसे रागी जीव परद्रव्य प्रत्यय राग द्वेष मोह वाला भाव वाला जीवो अपि एटले भले आचरंतु क्या आचरंतु महाव्रतादिनु आचरण करो यानी ऐसे मानने वाले जीव भले वो महाव्रत का आचरण कर रहे हो बाह्य में क्रिया पाल रहे हो तथा समिति परताम आलंबताम समितिनी उत्कृष्टतानु आलंबन करो। नीचे क्या लिखा है समिति ने विहार वचन आहार वगैरह नी क्रियामा जतनाथी प्रवर्तउते
विहार विहार यानी क्या लेना विहार समिति। अरे वाह मम्मी एरिया याद करना आया
पांच समिति के नाम क्या है बोलो हाँ एरिया समिति भाषा समिति ऐषणा समिति आदान निक्षेपण और
प्रतिष्ठापन
प्रतिष्ठापन समिति।
यहाँ ये जो यहाँ लिखा है ना आहार वगैरह नहीं तो ये पांच समिति में से कौन सी समिति होगी
आहार नहीं संबंधी कौन सी समिति अभी बताए ना
हाँ बोलो नलिन में
ऐषणा समिति यानी जतनाथी प्रवर्तु एटले देख शोध कर उसमें कोई हिंसा न हो जो प्रवृत्ति होती है तो उसमें ये समिति पूर्वक आचरण करता है ना उत्कृष्टता से यानी भले वो समिति नी उत्कृष्टता नु आलंबन करो यानी बाह्य में तो बिल्कुल जैसा शास्त्र में बताया है वैसा आचरण करो अद्यपि तोपन यानी इतना सारा होते हुए भी क्या कर रहे वो मुझे कुछ बंद नहीं हो रहा ऐसा कह रहा है क्योंकि मैं समय दृष्टि हूँ और बाह्य में वो महाव्रत कर रहा है आचरण कर रहा है समिति का पालन कर रहा है तो भी ते पापाहा तेओ पापी मिथ्या दृष्टि छे क्या कहा लोग जिसको संयमी त्यागी कहते हैं उनके पीछे पागल की तरह वो तो यह तो जो समिति यथार्थ पाल रहा है उसकी बात है अब जो कुछ नहीं है उसके पीछे भी लोग जा रहे उसकी बात नहीं यहाँ पर महाव्रत और समिति का जो यथार्थता उत्कृष्टता से पालन करता है वो भी पापी ऐसा यहाँ का मिथ्या चारित्र मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि छे यतः कारण के आत्म अनात्म अवगम विरहात क्यों उसकी भूल क्या है आत्मा ने अनात्माना ज्ञान थी रहित होवा थी मैं कौन हूँ पर क्या है वो पता नहीं उसको शरीर ही मैं हूँ और राग ही मेरा स्वभाव ऐसा मानता है तो उसको आत्मा का और अनात्मा का डिफरेंस पता नहीं है
यहाँ क्या लिखते हैं यहाँ लिखते अवगम विरहात, अवगम यानी ज्ञान, उसका उसको विरह हुआ है, विरह हुआ यानी क्या है, उसको ज्ञान ही नहीं
हुआ
है,
ही नहीं है हाँ। यानी उसको भेद ज्ञान का अभाव है
हाँ।
ऐसा हम कहेंगे
आत्मा और अनात्मा क्या है इसका भेद ज्ञान नहीं है कहो, या उसका ज्ञान ही सही नहीं है,
यानी उसको आत्मा की अनुभूति नहीं है, सम्यक हाँ। दर्शन नहीं है, क्योंकि आत्मा और अनात्मा को डिफरेंशिएट भेद किए बिना आत्मा का अनुभव कैसे करेगा वो, है ना, क्योंकि जो कुछ है अनात्मा रूप उसी को वो मैं मान रहा है, ये समिति का पालन करके ये मेरी क्रियाएं मानता है और उसी से मोक्ष होगा ऐसा मानता है, यानी उसके सातों ही तत्वों के सातों ही हो, एक दो नहीं, सातों ही तत्वों संबंधी उसकी मिथ्या मान्यता है, भ्रम बुद्धि चल रही है। तो सम्यक्त्व रिक्ता संति ते वो सम्यक्त्व थी रही छे, इसको दोबारा पढ़ते देखो
एक एक मिनट
हाँ।
यहाँ तो कहते हैं वो रिक्त है, किससे रिक्त है, तो कहते सम्यक तो से रिक्त है, खाली है, यानी क्या है, मिथ्या दृष्टि है। कितने अच्छे अच्छे शब्द वापरे हैं कि अवगम विराट, किसका, आत्मा और अनात्मा का, और कैसे है सम्यक तो रिक्त, सम्यक तो से खाली है बिल्कुल हाँ। चलो अभी आप
फिर दोबारा इसको पढ़ देखो, आ हूँ पोते सम्यक दृष्टि छू, मने कदी बंद थतो नथी, कारण के शास्त्र मां सम्यक दृष्टि ने बंद कहो नथी, एम मानी ने जेमनु मुख गर्व थी ऊंचू तथा पुलकित थयू छे, एवा रागी जीवो परद्रव्य प्रत्ये राग द्वेष मोह भाव वाला जीवो, भले महाव्रतादि नु आचरण करो तथा समिति नी उत्कृष्टता नु आलंबन करो, तो पण तेवो पापी मिथ्या दृष्टि ज छे, ज लगाय, कारण के आत्मा ने अनात्मा ना ज्ञान थी रहित होवा थी ते वो सम्यक्त्व थी रहित छे, और रहित होने पर भी अपने को मान रहे कि मैं मुनि हूँ, अभी महाव्रत का आचरण कर रहा है ना, मैं सम्यक् दृष्टि हूँ, इतने मैं मुनि हूँ मान रहा है और मनवा भी रहा है ना। देखो कोई मिथ्या दृष्टि है परंतु वो जानता है कि मैं अभी मिथ्या दृष्टि हूँ और उसको सच्चे मार्ग पर जाने की कोशिश कर रहा है, शास्त्र का अभ्यास कर रहा है, तत्व निर्णय के प्रति उन्मुख है वो, तो ठीक वो अच्छा है, परंतु जो मिथ्या दृष्टि है और अपने को सम्यक् दृष्टि मानकर मैं मुनि हूँ ऐसा जिसने मान लिया है, अभिप्राय में भी धारण किया है, उसका तो रास्ता ही बंद हुआ ना, इसलिए उसको पापी कहा। भावार्थ, परद्रव्य प्रत्यय राग हुआ छता, राग यानी वो मिथ्यात्व वाला राग समझना, परद्रव्य प्रत्यय राग हुआ छता, जे जीव हूँ सम्यक् दृष्टि छू मने बंद थतो नथी एम माने छे, तेने सम्यक्त्व केवू, ते व्रत समिति पाळे तो पण स्वपरणु ज्ञान नहीं हुआ थी, ऊपर लिखा ना आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है, और यहाँ कहते स्वपर का ज्ञान नहीं है, इसलिए वे ते पापीज छे, पोताने बंद नथी थतो एम मानीने स्वच्छंदे प्रवर्ते ते वळी सम्यक् दृष्टि केवो, कारण के ज्यां सुधी यथाख्यात चारित्र न थाय त्यां सुधी चारित्र मोना राग थी बंद तो थाय छे। ये क्या कहता है, मुझे बंद नहीं है क्योंकि शास्त्र में कहा है, परंतु शास्त्र में कहा विशिष्ट अपेक्षा से कहा था, वहां वो अनंतानुबंधी मिथ्यात्व वाला बंद नहीं था, तो ये क्या मानता है मुझे बंद ही नहीं है, तो जितने अंश में राग है जिसके सम्यक दृष्टि के भी बंद होगा कि नहीं होगा, और ये मिथ्यात्व होकर भी समझता है कि मुझको बंद नहीं हो रहा, अने जहां सुधी राग रहे त्यां सुधी सम्यक दृष्टि पोतानी निंदा गर्हा करतो ज रहे छे। शु क्या कहना चाहते हैं, देखो ये कौन सा जीव लिया, वो रागी मिथ्या दृष्टि है फिर भी कुछ व्रत पालन करता है और अपने को सम्यक दृष्टि मानता है और कहता है कि मुझे बंद ही नहीं है, और जो कुछ पाल रहा है समिति आदि की क्रियाएं कर रहा है तो अच्छा मान रहा है, और सम्यक दृष्टि कैसा होता है, उसके जो राग है उसकी भूमिका में हो रहा है उससे बंद भी है, और वो उसके लिए अपने आप को दोष है ये मेरा ये स्वीकार है, उसको निंदा ग्रह करता है, अपने दोषों की निंदा करता है, तभी तो वो प्रतिक्रमण आदि चीजें होगी ना उसके, जो क्योंकि ये तो मेरा दोष है, ये अकेले पापों का प्रतिक्रमण नहीं होगा, ये मैं कहाँ अटका हूँ शुभ भावों में, ऐसा भी उसको लगता है अंदर से। तो ये शुभ भाव भी मेरे दोष है, उसके लिए भी वो हो रहा है उसको, उसमें उत्साह भी आ रहा है, फिर भी
यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस जीव को वास्तव में तो सम्यक्त्व हुआ नहीं है, फिर भी वो ऐसा मानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, और उससे वो फूल जाता है स्वयं को, और स्वयं को बहुत उच्च दर्जे का अवस्था का जीव समझता है। और क्या कह रहे हैं, वो ऐसा जो होता है तो समझता है कि मुझे कुछ बंध ही नहीं हो रहे, और यहाँ उसके अगेंस्ट शास्त्र का ही आधार देते हुए ये बता रहे हैं कि जब तक इस जीव के यथाख्या चारित्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, तब तक तो उसको चारित्र मोह का बंध होता ही है, और तब तक उसके राग तो चलेंगे ही। ये राग का सद्भाव कब तक है? हाँ, दसवें गुणस्थान के अंत तक, बरोबर। तो दसवें गुणस्थान के अंत तक राग है। कौन सा राग है बेन, रश्मि बेन? हाँ, संज्वलन बराबर है, लेकिन और नजदीक जाओ। हाँ बोलो साहब, सूक्ष्म लोभ, ये करेक्ट आंसर है। हाँ, वो अभी संज्वलन ही है। ये हमारे वीरेज में छुपे रुस्तुम है। बहुत अच्छा। हाँ, अभी आप जो
यथाख्या चारित्र कौन से गुणस्थान कौन कहना चाहता है? 11, 12, 13, 14 पूर्ण वितरकता को कहते हैं यथाख्या चारित्र, कषाय का अंश भी नहीं है वहाँ पर। तो जब तक ऐसी बात नहीं है तब तक बंध है कि नहीं है? दसवें गुणस्थान वाले को भी 17 प्रकृतियों का बंध होता है, ध्यान में है ना? तो वो कषाय के साथ वहाँ बंध भी है, ये बात बताना चाहते हैं।
और ये मिथ्यात्व होते हुए मानता है कि मुझे बंध नहीं हो रहा है, तकलीफ वो है ना। आप आगे पढ़ो।
देखो यहाँ अब तक हमने पढ़ा था कि जहाँ सुधी राग रहे त्या सुधी सम्य दृष्टि पोतानी निंदा ग्रहा करतो ज रहे छे। अपनी निंदा ग्रह करते नहीं, वो तो राग जो है उससे विरक्तता है ना उसकी, आत्मा अनात्मा का भेद ज्ञान करता है, और उठने वाले रागों से तो उनसे वो अलग होकर अपने में स्थिर होना चाहता है। देखो अकेले सम्यक दर्शन होने से कुछ नहीं चलता, कुछ कार्य नहीं होता, उसने तो बस पहचान लिया कि मैं भिन्न हूँ और ये भिन्न है। अब उसका आगे का जो मार्ग है वो काहे से होगा? स्थिरता से होगा, क्योंकि उसने स्वरूप और पररूप इसको पहचान तो लिया है, मैं कौन हूँ जाना है। तो मैं कौन हूँ जान लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा उससे। तो जिसको कहते हैं ना वो स्वरूप में स्थिरता, उसी के कारण जो अभी हमने पहले भी देखा था कि राग से भेद ज्ञान करके अपने आप में वो जब स्थिर हो जाएगा तब वो राग द्वेष क्रम से कटते चले जाएंगे। तो चारित्र मोह भी जो अंदर पड़ा है वो इसी तरह से उसको कटता चला जाएगा। इसलिए यहाँ कहा, देखो यहाँ लिखा है आगे, ज्ञान थवा मात्र
एक मिनट। हाँ। देखो यहाँ एक बात बिल्कुल ख्याल में रखना कि ऐसा अगर हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं कि जा सुधी राग रहे त्या सुधी सम्यक दृष्टि निंदा गर्रा करतोज रहे छे, यानी हाँ वो ये ऐसा नहीं समझना कि दूसरे का भी उसको निंदा करने को फुल परमिशन पड़ी है, वो तो स्वयं की निंदा और स्वयं की गर्रा कर रहा है। यानी मैं अभी कहाँ यहाँ वहाँ भटक लटक रहा हूँ, तो मुझे तो अपने स्वरूप में ही जाना चाहिए, राग द्वेष होने नहीं चाहिए।
क्योंकि वो राग द्वेष जो है वो आकुलतामय है, दुखमय है, तो उतना दुख होगा ना उसको, पर्याय में है वहाँ पर,
तो इसलिए वो उससे पोतानी जो लिखा है उसको भूलना नहीं चाहिए। हाँ,
तो ज्ञान थवा मात्रती बंधती छुटा तो नहीं। आप कहेंगे हमने तो सोचा था समय दर्शन हो जाएगा तो बस हो गया अपने इस भव का, इति कर्तव्यता हो जाएगी, उससे कुछ नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान थया पछी तेमाज, तेमाज एटले ज्ञानमाज, लीनता रूप शुद्धोपयोग रूप चारित्र थी बंध कपाय छे। जितना जितना स्थिर हो जाएगा, इसी को चारित्र कहते हैं, उसी को लीनता कहते हैं, उसी को एकाग्रता कहते हैं, उसी को शुद्धोपयोग कहेंगे। तो ज्ञान ज्ञान में ही स्थिर होकर रहे तो उसके कारण वो बंध कपाय चेने ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में चला जाएगा, बंध मिटता चला जाएगा उसका। माटे राग होवा छता बंध थतो नथी एम मानीने, मान्यता उसकी क्या है, वो अभिप्राय की बात चल रही है। स्वच्छंदे प्रवर्तनार जीव मिथ्या दृष्टि ज छे, कि आचार्यों को ये लिखने की जरूरत पड़ी उस टाइम,
है ना छाबड़ा लिख रहे।
हाँ, मगर ये किस पर लिखा? मूल अमृतचंद्राचार्य के श्लोक पर भावार्थ लिखा है। तो अमृतचंद्राचार्य ने ऐसा लिखा है कि जो ऐसा ये ऊपर लिखा ना, उत्तान उत्पुलक वदना, यानी ऐसा ऊंचा हो के मैं सम्यक दृष्टि और मुझको बंद नहीं, ऐसा कहता है। हम कहते ना वो ऐसे सिर उठाकर बोलता है कि मुझको बंद नहीं है, उसकी बात की। तो उस काल में भी ऐसे जीव हो गए सामने, तभी ये लिखने की जरूरत पड़ी उनको। पहले तो लिख दिया था, तो गाथा में तो क्या लिखा था कि उसके तो बंद नहीं होता वगैरह वगैरह पहले लिखा था ना। और ये जो राग हो रहा है वो भी मेरे में नहीं है, वो कर्म के उदय में ऐसा कर उससे भेद ज्ञान करता है। परंतु आचार्यों की करुणा इतनी है कि इतना सुनकर कोई स्वच्छंद ही नहीं हो जावे, इसलिए ये बीच में उन्होंने कलश प्रस्तुत किया है। अहीं कोई पूछे के व्रत समिति तो शुभ कार्य छे, तो पछी व्रत समिति पाळता छता ते जीव ने पापी केम कयो? प्रश्न समझ में आया? वो जीव कौन सा है? महाव्रत अंगीकार किया है उसने, अंगे ने पाल रहा है और समितियों का पालन कर रहा है, तो फिर भी उसको पापी क्यों कह रहे? ये तो उतना तो पुण्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी उसके भले उस समय दृष्टि नहीं है परंतु ये उसके शुभ भाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ऐसा प्रश्नकार का प्रश्न है, स्वयं उन्होंने ही उठाया है। तेनु समाधान, सिद्धांत मां पाप मिथ्यात्व ने ज कहूं छे।
सिद्धांत यानी क्या समझ में?
आगम,
आगम में सिद्धांत कहो या आगम कहो, अर्थ एक ही है।
देखो अभी आगम की बात निकली है तो अध्यात्म किसको कहना? नलिन भाई, वो हाँ। और ये जो आगम यानी शास्त्र है तो उसको अध्यात्म, अध्यात्म शास्त्र किसको कहेंगे? हाँ, अध्यात्म शास्त्र ग्रंथ, ग्रंथ की बात कर रही हूँ। आत्मा का स्वरूप बताए, फॉर एग्जाम्पल समय सार, हाँ त्रिकाली द्रव्य की मुख्यता। हाँ, अभी हमने धवल पढ़ा, हाँ क्या अरविंद क्या आया था
भाग 13 में?
हाँ, 13वें भाग में अभी हमने पढ़ा है, तो उसमें तो लिखा है आत्मा की अवस्था और उसमें होने वाले निमित्त, इनकी चर्चा जिसमें है तो कहते हैं ये जो सारे जो 20 प्ररूपणा है, ये जो जीव कांड कर्म कांड, ये सभी ये सारे ही अध्यात्म ग्रंथ है, कहा उसमें, क्योंकि हमको अपने को जानना है तो अपनी अवस्थाओं को भी जानना पड़ेगा और उस अवस्था में जो निमित्त भूत होते हैं उनको भी जानना पड़ेगा। ख्याल आता है क्या कहने? तो हमें तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानना है, परंतु वर्तमान में कैसी अवस्था हो रही उसको भी जानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो उसकी अवस्था भी जानेंगे, इसीलिए तो गुणस्थानों का इतने क्रम पड़ते। अब उसमें जो निमित्तभूत कर्म है उसको भी जानना पड़ेगा, तो इसलिए कहते ये सारा ही जो है वो अध्यात्म शास्त्र है। उन्होंने खुद कहा ये, हम अध्यात्म षटखांग षटखंडागम को उन्होंने अध्यात्म शास्त्र कहा, और हम तो बस ये कर्णानियोग नहीं पढ़े, उन्होंने इसको कर्णानियोग कहा ही नहीं है। कर्णानियोग तो कहते हैं त्रिलोक, त्रिलोक की रचना को आगम है, परंतु उसको अध्यात्म कहा। परंतु लोग क्या समझते हैं कि ये सारा जो कर्म की बात आई ना, ये कर्णानियोग है और हमें तो त्रिकाली ध्रुव भगवान वाले, हम इसको नहीं जानना है, उसको जानने से कुछ फायदा नहीं, अपना टाइम वेस्ट हो जाता है, ऐसा लोगों को लगता है। पीछे आपने लिखा था ना रेफरेंस के लिए,
नहीं मिल रहा इसमें?
हाँ हाँ,
आपने लिखा होगा तो देख लेना।
हाँ, मैं देखती हूँ, आप आगे पढ़ना तब तक।
हाँ हाँ, तो अपनी तो क्या बात हो रही यहाँ पर कि यहाँ आगम यानी सिद्धांत में जो लिखा है, क्या लिखा है कि पाप किसको कहना, तो जो पाप का मूल है ऐसा कहने में आता है कि पाप का मूल जो है यानी बहुत सीधी भाषा में कहो या प्राइमरी भाषा में कहो तो कहते हैं लोभ ये पाप का बाप है। लोभ के वश होकर जीव सारे पाप करता है, सारे यानी ये हिंसा झूठ चोरी कुशल परिग्रह वगैरह जो है, तो वो तो बहुत स्थूल बात है, लेकिन ये सारी बात जो है ये जो पाप हो रहे हैं उसमें तो मूल तो मिथ्यात्व है, इसलिए मिथ्यात्व को ही पाप कहा है। तो यहाँ तो कहते हैं सिद्धांत मां पाप मिथ्यात्व ने ज कयू छे, जहां सुधी मिथ्यात्व रहे त्या सुधी शुभ अशुभ सर्व क्रिया ने अध्यात्म मां परमार्थे पापज कहवाय छे।
देखो यहाँ ये 36 नंबर का पृष्ठ है और 13वीं पुस्तक है धवला की, वहाँ स्पर्श नाम का विषय चल रहा है। स्पर्श है अभी वो जो कुछ कांटेक्ट में आना जो कुछ है, तो जीव का जीव के साथ, कर्म का जीव के साथ, जीव का कर्म के साथ, कर्म का आपस में, कर्म का शरीर के साथ, ऐसे अलग अलग टाइप के स्पर्श बताए हैं। तो ये बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है उसकी बात नहीं है, परंतु यहाँ ऐसा प्रश्न पूछा गया था। मैं पहले प्राकृत पढ़ती हूँ क्योंकि ये आप कहेंगे वो हिंदी में लिख दिया प्राकृत में नहीं था, तो ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा कहते ऐसा है, यदि एवं अपुनरुत्तानम,
कौन सा पेज बताया,
पेज 36 है और वो प्राकृत के नीचे से तीसरी दूसरी लाइन है, दूसरी तीसरी लाइन। तो कहते दव फासान एत्थ परुवणा किन्न किदा कदा, यानी वो अन्य जो स्पर्श संबंधी अन्य प्ररूपणा यहाँ क्यों नहीं की, क्योंकि जो स्पर्श जो है तो अन्य भी एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल के साथ भी है, उसको स्पर्श कहते हैं। अभी हमने घर बनाया तो ईंट और पत्थर का भी स्पर्श है आपस में, उसकी यहाँ क्यों चर्चा नहीं की। तो कहते हैं न, क्यों नहीं, पयदाए अज्जप विज्जाए अध्यात्म विद्या में अपयद अनज्जप विज्जाए बहुनय गहन नीलिनाए परुवणा अणुवत्ती दो। अभी इसका अर्थ हम हिंदी में पढ़ेंगे। ये कहते हैं इसका समाधान करते हुए वीरसेन स्वामी ने जो कुछ भी कहा है वह मार्मिक है। उनका कहना है यह अध्यात्म शास्त्र है, कौन सा, ये षटखंडागम, ये धवल जो है वो अध्यात्म शास्त्र है, इसलिए इसमें अन्य विषयों के कथन को विशेष अवकाश नहीं है। अध्यात्म शास्त्र का अर्थ है आत्मा की विविध अवस्थाओं, ये 37 पृष्ठ पर लिखा है हिंदी में, ऊपर से सातवीं लाइन। देखो अध्यात्म शास्त्र का अर्थ यह है आत्मा की विविध अवस्थाओं और उनके मुख्य निमित्तों का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र। अध्यात्म शास्त्र का क्या अर्थ है, आत्मा की विविध अवस्थाएं और उनके मुख्य निमित्तों का कथन करने वाले शास्त्र, यह उसका व्यापक अर्थ है। अभी बात
जैसे
और
जीव की विविध अवस्थाओं में मूल वस्तु का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही अध्यात्म शास्त्र कहलाता है, उसी तरह इसको भी उन्होंने बताया।
परंतु उसके आगे भी लिखा है, परंतु कार्य कारण भाव की दृष्टि से विचार करने पर उन विविध अवस्थाओं और उनके मूल निमित्तों का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों का भी इसमें अंतर्भाव हो जाता है, इसमें यानी अध्यात्म शास्त्र में, अध्यात्म ग्रंथ में। तो हमें ऐसा लगता है कि आत्मा की छोड़ पुद्गल की भी बात आई, पर्याय की भी बात आई, तो भी हमको ऐसे एलर्जी आती है, ये बात नहीं है। क्योंकि आत्मा को हमको जानना है तो उसको पूर्ण रीति से जानना पड़ेगा, कौन सी पर्याय होती है, स्वभाव रूप क्या है, विभाव रूप क्या है, उसमें कौन से निमित्त बनते हैं, ये सभी का जो विवेचन है उस सबको मिलकर अध्यात्म शास्त्र ऐसा कहा है।
ये पूरा पैराग्राफ उसी से कंसर्न है,
बहुत बड़ी, ये बहुत डिटेल चर्चा है इसमें।
इस दृष्टि से विचार करने पर जो 14 मार्गणाओं में से प्रारंभ की 4 मार्गणाओं को द्रव्य मार्गणाएं कहते हैं, वे सिद्धांत ग्रंथों के अभिप्राय और उनकी वर्णन शैली से अनभिज्ञ है, यही कहना पड़ता है। यानी इसको ये अध्यात्म शास्त्र नहीं कहते हैं, उनको ये अज्ञान है, उनका ऐसा कह रहे हैं।
ये पहली 4 मार्गणाएं कौन से, गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, योग मार्गणा है, वो कहते हैं इसका कुछ लेना देना नहीं जीव के साथ।
आगे वाला पढ़ो
तो ज्ञान मार्गणा, हाँ वो जीव की ऐसा समझते हैं ना वो। तो कहते हैं सिद्धांत ग्रंथों में भाव मार्गणाओं का ही विवेचन किया गया है। यह बात खुद्दाबंध के 14 मार्गणाओं का विवेचन करने वाले सूत्रों से भी स्पष्ट जानी जाती है।
बस यानी ये उनका ये कहना है कि ये शास्त्र भी अध्यात्म शास्त्र है, और अरे वो करना नहीं होगा, करना नहीं होगा, बात मत करो, ऐसा करके हटाते उठाते हैं। चलो अब आगे आप पढ़ रहे हैं, ये पृष्ठ क्रमांक 78 पर आए हम
नीचे, यहाँ लिखा ना पापी क्यों कहा था, तेनु समाधान सिद्धांत मा यानी सिद्धांत ग्रंथ में पाप मिथ्यात्व ने ज कहूं छे, जहां सुधी मिथ्यात्व रहे त्यां सुधी शुभ अशुभ सर्व क्रिया ने, कितना भी पुण्य के परिणाम हो या पुण्य की क्रिया हो, सभी को अध्यात्म मा परमार्थे पापज केवाय छे। क्रिया की बात की ना, क्योंकि ये तो जीव मान रहा है कि मैं तो इतने व्रत वगैरह पालन करता हूं तो मुझे तो कुछ तो वहां फायदा हो जाएगा, मुझे मोक्ष। देखो ये मुनि भी बनते हैं, क्यों बनते हैं, उन्हें तो चाहिए तो मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, परंतु वो आत्मा अनात्मा की बात नहीं जानते, नहीं पहचानते, कभी सुनी भी नहीं है, उस पर विचार भी नहीं किया है, और बस देखा देखी ऐसा लगता है कि मैं मुनि दीक्षा अंगीकार करूंगा तो मेरा भला हो जाएगा, इसलिए जैसा शास्त्र में कहा है वैसा बिल्कुल डिक्टो आचरण करते हैं। द्रव्यलिंगी तो उन्हें कहते ना जिनका आचरण यथार्थ हो, फिर भी क्यों, उनके तो अंदर से ऐसी लगन लगी है कि मैं मोक्ष मार्ग प्रकट करूंगा, परंतु उन्हें अभी वो सच्चे उसका मर्म पहचानने में नहीं आया है। तो यहां कहते हैं जब तक मिथ्यात्व है तब तक कोई भी शुभ शुभ क्रिया हो तो उसको पाप ही कहेंगे, कोई भी भाव हो उसको भी कहेंगे। वही व्यवहार नहीं प्रधानता मां, व्यवहारी जीवों ने अशुभ छोड़ावी, किसकी बात है यह, व्यवहार नय के प्रधानता से, और व्यवहारी जीवों के अशुभ छोड़ावी शुभमा लगाड़वा शुभ क्रिया ने कथनचित पुण्य पण कहवाये छे, किसी अपेक्षा से उसको पुण्य भी कहने में आता है, कहने की बात है नहीं है, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटा है। देखो हम देखते हैं मिथ्यात्व नहीं छूटा तो सभी घाती कर्म बन रहे हैं, और शुभ करने से अघाती में कुछ पुण्य प्रकृतियां बंधेगी, और पाप करने से अघाती में कुछ पाप कर्म प्रकृति, तो ये मिथ्यात्व वाला अनंतानुबंधी का तो बंध सदैव चल ही रहा है, तो उसको इस संसार चक्र में से छूटने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता है। कितने भी उच्च प्रकार के पुण्य क्यों ना अंगीकार करे, कितने भी यात्रा करे, महाव्रत अंगीकार करे, मुनि दीक्षा ले ले, तो भी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध भी चल रहा है उसका, तो इसमें से छूटने का उपाय क्या है। तो पहले में पहले मिथ्यात्व क्या है और वो कैसे छूटता है, कैसे आत्मा अनात्मा को पहचानना, ये बात मुख्य है, जिसको हम कहते हैं ना 7 प्रयोजनभूत तत्व जो है, उसकी पहचान करना, उसके शास्त्र में से पढ़ना, उस पर बार बार विचार करना, निर्णय स्वयं करना पड़ेगा, ये तत्व ऐसे ही है। जब तक निर्णय नहीं है तो ये सच्चा है कि झूठा है, ये इस भगवान को नमस्कार करूँ कि नहीं, उस गुरु को करूँ कि नहीं, ये बात होती है ख्याल है ना, तो आपके गुरु वो गुरु और हमारे गुरु वो छूटे, ऐसी बात मन में होती, इसीलिए तत्वों का निर्णय होना अत्यंत आवश्यक है। ये 7 तत्वों के निर्णय में ही देवशास्त्र गुरु का निर्णय गर्भित हो जाता है, क्योंकि जिन गुरुओं को, जो गुरु की श्रद्धा कहो या संवर तत्व निर्जरा तत्व की श्रद्धा, श्रद्धा हो कहो एक ही बात है, मोक्ष तत्व की श्रद्धा कहो या देव के स्वरूप की श्रद्धा करो, एक ही बात है, तो उसी में वो गर्भित है। तो कहीं पर देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को भी सम्यक दर्शन कहते हैं और कहीं 7 तत्व के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहते हैं, तो वो बात उसमें गर्भित होती है। तो यहाँ कहते हैं कथनचित पुण्यपन कहवाय छे, आम कहवाती स्यादवात मतमा काई विरोध नथी, क्योंकि विशिष्ट अपेक्षा से सामने वाले जीव को देख कर ऐसा कहने में आता है। बहुत बड़ा भावार्थ लिखा उन्होंने,
यहाँ फुल पेज
है। वही कोई पूछे छे के, हाँ आपको प्रश्न, नलिन भाई वो क्या कह रहे हैं जरा प्रश्न पूछना उनका, रिपीट कर।
आपने अध्यात्म शास्त्र के बारे में बताया
देखो आगम किसको कहते हैं, तो जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी के अनुसार अभी तक चला आ रहा है उसको आगम कहते हैं। तो अध्यात्म कहो और आगम को एक ही बात है, कहीं कहीं अध्यात्म को परमागम भी कहते हैं। ये अपेक्षा से भी उसमें बात करते कि ये अध्यात्म शास्त्र है और ये आगम शास्त्र है, जिसमें छह द्रव्यों का विशेष वर्णन आता है तो उसको आगम कहते हैं, ये भी अपेक्षा है कहीं पर, और जिसमें आत्मा की मुख्यता है उसको अध्यात्म शास्त्र कहते हैं। परंतु ये पूरे आगम को ही अध्यात्म कहेंगे तो भी उसमें कोई ऐसी बात नहीं जो अभी हमने पढ़ा। षटखंड आगम है ना, षटखंडों में उसमें तो बहुत सारी वो बातें, जो बंध कैसे होता है, कौन से कर्मों का होता है, कितनी प्रकृतियां होती है, स्थिति कितना है, अनुभाग बंध हो, ये जो हमने 50 से 55 गाथा में जो समय सार में पढ़ा है, वर्ग वर्गना अनुभाग, अनुभाग बंध स्थान, उदय स्थान, अमुक्तम, ये सभी, उन सभी का वर्णन उसमें डिटेल में है कि जो मैं नहीं हूं तो मैं कौन नहीं हूं वो भी जानना पड़ेगा ना, क्योंकि जीव की अवस्थाओं में उसका निमित्त बनता है, इसलिए उन्हें जानना जरूरी है, तो उसको भी अध्यात्म में लिया है।
अभी समयसार भी अध्यात्म ग्रंथ कहा जाएगा कि नहीं, तो उसमें भी ये मार्गणा वर्गणा आदि की बात आई कि नहीं, तो उसको कहाँ डालेंगे हम। यानी ये यहाँ जो बता रहे हैं वो अपेक्षा, एक अपेक्षा अलग है, और आप जो बता रहे हैं हमने अभी तक जो जानी है वो अपेक्षा अलग है। जैसे हम अभी तत्वार सूत्र को आगम कहेंगे और समय सार को अध्यात्म कहेंगे, इस तरह से
बढ़ेंगे आगे। देखो वोड़ी कोई पूछे छे के परद्रव्य मां राग रहे त्यां सुधी जीव ने मिथ्या दृष्टि कहो ते वात मां हमें समझा नहीं, अविरत सम्य दृष्टि वगैरह ने चारित्र मोहना उदय थी रागादि भाव तो होय छे तेमने सम्यक तो केम छे, क्या कहते हैं कि परद्रव्य में राग है तो सम्यक दृष्टि को भी है, चौथे गुणस्थान वाला है, पांचवे गुणस्थान, क्योंकि गृहस्थी अभी व्यापार भी करते हुए देखता है, बाल बच्चों के प्रति उसके भी राग भाव देखने में आता है, देवशास्त्र गुरु के प्रति भी राग है, तो उसके भी चारित्र मोह के उदय में रागादि भाव तो हो रहे हैं, उसको चारित्र मोह है ना, अभी तीन कषाय चौकड़ी का उसको सद्भाव है तो उसमें उसके रागादि भाव भी हो रहे हैं। तो आप जो कहते हो कि परद्रव्य में जब तक, परद्रव्य में जब तक राग है तब तक जीव को मिथ्या दृष्टि कहना, ये बात हमको ठीक नहीं लगती, ये उसका प्रश्न है, उसका समाधान अभी पढ़ते हैं। अहि मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी राग प्रधानपने कहो छे, सर्वत्र यही बात है, जब कहते कि समय दृष्टि को राग नहीं है और राग के अभाव में उसको बंध होता नहीं है, तब ये कौन सा राग समझना, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाला राग। अभी बाद में जो चारित्र मोह का राग है उससे उसको, उसने उसको अनात्मा ये अपने से भिन्न ऐसा जान लिया है और अपना स्वयं का अनुभव कर लिया है, और जो राग है उसके प्रति भी उसको खेद है, उसको उसमें कुछ बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, और उससे वो भी भेदनियान हर समय चल रहा है और स्वभाव में प्रवृत्ति चल रही है उसकी, उसके कारण उसको राग नहीं है ऐसा विशिष्ट अपेक्षा सहित कहने में आता है। देखो अहीं मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी राग प्रधानपणे कहो छे, जेने वो राग होय छे अर्थात जेने परद्रव्यमा तथा परद्रव्य थी थता भावों में, ये परद्रव्य थी थता भाव है ने कौन से भाव है, हाँ राग द्वेष के प्रेरण, अपने में होने वाले विकारी भाव, परद्रव्य में और परद्रव्य के होने कारण होने वाले अपने में होने वाले भावों में आत्मबुद्धि पूर्वक प्रीति अप्रीति थाई छे। इसका अर्थ क्या है, आत्मबुद्धि यानी ये मेरे है, मैं ही हूँ, ये मेरा स्वभाव है, ऐसी उसमें परद्रव्य में आत्मबुद्धि, शरीर मैं हूँ ऐसी आत्मबुद्धि, और परद्रव्य के कारण होने वाले राग में भी आत्मबुद्धि या मम बुद्धि, ये मेरे है, ये भाव मेरा स्वभाव है ऐसा वो जानता है, उसमें प्रीति अप्रीति थाई छे, किसमें, परद्रव्य में भी प्रीति अप्रति, अभी ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यही बात चली ना सब, इष्ट अनिष्ट बुद्धि है, बुद्धि है ना मिथ्यात्व है, और उसके कारण राग द्वेष होते हैं, प्रीति अप्रीति होती है, राग द्वेष कहो प्रीति अप्रीति कहो, ये खाली परद्रव्य में नहीं, अपने में उठने वाले जो राग द्वेष के परिणाम है उसके प्रति भी प्रीति अप्रीति होती है। राग का राग होता है ना, और द्वेष का द्वेष होता है क्या? द्वेष का भी राग होता है कभी कभी। तेने स्वपरणु ज्ञान श्रद्धान नथी। मैं कौन हूं, पर कौन है, मेरा स्वभाव क्या है, ये प्रभाव क्या है, इसका उसको ज्ञान भी नहीं और श्रद्धान भी नहीं। दूसरी भाषा में भेद ज्ञान नथी एम समझूं। जीव मुनिपद लई व्रत समिति पाड़े तो पण, ये लोगों को ऐसा लगता है ना, मैं भी मुनि बन जाऊं और व्रत समिति पालन करूं, परंतु उसको तो ये अंदर क्या बात होती वो तो पता ही नहीं चलता है। तो जीव मुनिपद लई व्रत समिति पाले तोपन। देखो जब बच्चे थे ना हम, तो क्या कहते हैं, तो बड़ों की कोई बातें देखकर बहुत अच्छा लगता था। और बड़ों से जैसे अभी किसी की शादी देखी तो क्या करते हैं, चलो ये कपड़े पहनेंगे गहने पहनेंगे तो हमारी भी शादी है कहेंगे, तो अर्थ कुछ कहते हैं, समझते नहीं ना उसके पीछे का। बड़ों की कोई चीजें देखकर वैसा करने जाते हैं, परंतु उसमें से पता नहीं लगता उनको कुछ। वैसे क्या कहते हैं यहाँ, जीव मुनिपद लई व्रत समिति पाड़े तो पण, ज्यां सुधी व्रत समिति पाड़ता पर जीवोनी रक्षा शरीर संबंधी जतनाथी प्रवर्तन इत्यादि परद्रव्यनी क्रिया थी। ये किसकी क्रिया हो रही है, परद्रव्य की क्रिया, जो कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे आहार का ग्रहण करना, कैसे वस्तु नीचे उठाना रखना आदि जो है, प्रयत्न पूर्वक जो वाली है बातें, वो परद्रव्य की क्रिया हो रहा है, वो परद्रव्यनी क्रिया थी। तथा परद्रव्यना निमित्ते तथा पोताना शुभ भावो थी। पोतानो मोक्ष माने छे, यानी शरीर की क्रिया करने से और विशिष्ट शुभ भावों का पालन करने से मुझे मोक्ष होगा, ये बात वे मानते। देखो ये भावार्थ लिखने वालों को भी इतना बड़ा लिखना पड़ा, क्योंकि मुनियों के बारे में तब भी ये संदेह चल रहा था ना, बहुत अधिक मात्रा में हो रहा था। अने परजीवोनो घात थवो अयत्नाचार रूपे प्रवर्तऊ इत्यादि परद्रव्यनी क्रिया थी। तथा परद्रव्यना निमित्ते थता पोताना अशुभ भावो थी ज पोताने बंद थतो माने छे, यानी वो मिथ्यात्व से बंद होता है, इसे कुछ वो मान्यता ही नहीं उसकी, ये तो बस शुभ करूं तो मुझे मोक्ष होगा और अशुभ करूं तो बंद होगा, ऐसी मान्यता है उसकी। और वो हो रही है क्रिया शरीर की और मान रहा है वो मेरी है और मैं कर रहा हूं, उसमें उसके स्वामित्व बुद्धि चल रही है। त्या सुधी तेने स्वपर्णु ज्ञान थयू नथी एम जाणू। देखो शास्त्र में तो वहां तक कहा है, ऐसे जो मुनि है जिसको ये परद्रव्य की क्रिया है और राग से कुछ लाभ नहीं, ऐसा जो नहीं मानते हैं उनसे गृहस्थ सम्यक दृष्टि भला है। ये रत्नकरण शौकाचार में गाथा आई थी, कुछ 32 नंबर की होगी शायद, तो ऐसे मुनियों से तो गृहस्थ भला है सम्यक दृष्टि, क्योंकि उसको तो आत्मा अनात्मा का ज्ञान है, स्वद्रव्य परद्रव्य की वहां बात उसको पता है। एम चानु कारण के बंध मोक्ष तो पोताना अशुद्ध तथा शुद्ध भावती थता हता। क्या कहते, यानी बंध क्यों हो रहा था, स्वयं के अशुद्ध भावों से, और मोक्ष शुद्ध भावों से। शुभाशुभ भावो तो बंधनाज कारण हता, अने परद्रव्य तो निमित्त मात्र ज हतुं, तेमा तेने विपर्यय रूप मान्यो। क्या कहना है, ये तो शुद्ध भाव ने शुद्ध उपयोग और अशुद्ध भाव ने शुभ और अशुभ दोनों, तो ये अशुद्ध में से एक शुभ को उसने शुद्ध माना, उससे अपना मोक्ष होगा माना, और अशुभ भावों से बंद होगा माना, परंतु शुभ से भी और अशुभ से दोनों से ही बंद होता है, ये उसकी मान्यता।
अभी जो आपने बताया अपने चालू पुस्तक में 90 पेज पर है, देखिए 33 नंबर का श्लोक 90 पेज पर, गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो न एव मोहवान, अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो माहिनो मुने।
33 है, मैंने 32 बताया था।
क्या कह रहे हैं, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें वो बात आई हुई है हा? क्योंकि अभी समय निकल गया है और ये आने वाला ही है अभी आगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकर्ण मो सदा देत हो न।